उत्तर पूर्व में कहीं हिमाली कोठारी 18 सितंबर 2024 स्कूल में भूगोल में हमें भारत के राजनीतिक मानचित्र पर परीक्षा देनी थी। इसके लिए हमें प्रत्येक राज्य की स्थिति, अस्पष्ट रूपरेखा और राजधानी जानने की आवश्यकता थी। मैं लगभग सभी राज्यों की रूपरेखा काफी सटीक रूप से बना सकता था, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ने मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे उनका मूल स्थान पता था, लेकिन मैंने एक को दूसरे से बदल दिया। यदि परीक्षा के पेपर में इन 5 राज्यों में से किसी की रूपरेखा की आवश्यकता होती तो मैं आजमाए हुए इनी मीनी माइनी मो विधि का उपयोग करता और उसके बाद एक त्वरित प्रार्थना करता। मैं 80 के दशक का छात्र हूं, इसलिए परीक्षा में उस एक अंक की संभावना उस क्षेत्र के भूगोल को याद करने के लिए पर्याप्त कारण होनी चाहिए थी। लेकिन एक कारण से मैं समझ नहीं पाया, मैंने ऐसा नहीं किया। वर्षों से मैं एक उत्सुक विश्व भ्रमण करने वाला बन गया। प्रत्येक यात्रा से पहले क्षेत्र के भूगोल, नदियों और पहाड़ों, उसके शहरों के स्थान और दूरियों का अध्ययन किया जाता था। मैं एटलस और बाद में गूगल मैप्स पर घंटों बिताता था। क्षेत्र का नक्शा मेरे दिमाग में इस कदर अंकित हो गया था कि जब मुझसे मेरी यात्रा के बारे में पूछा जाता था तो मैं अपनी तर्जनी उंगली से देश का नक्शा और मार्ग हवा में खींच लेता था। लेकिन उन 7 बहनों में से 5 बहनें मेरे दिमाग में देश के विस्तारित पूर्वी हिस्से में कहीं एक साथ ही रहती थीं। पिछले हफ्ते तक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म CSSS का एक संदेश मेरे फोन पर आया था। यह उनके नए प्रकाशन के बारे में था जिसका शीर्षक था पीस एलुड्स मणिपुर। विवरण से पता चलता है कि यह 2023 से मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में एक तथ्य खोज रिपोर्ट है। निदेशक इरफान इंजीनियर और कार्यकारी निदेशक नेहा दाभाड़े वाली CSSS टीम ने मणिपुर के इम्फाल और चुराचांदपुर जिलों का दौरा किया था ताकि स्थिति और लोगों और भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में प्रत्यक्ष डेटा एकत्र किया जा सके। पिछले 1.5 साल में मैंने मुख्य धारा के समाचार मीडिया में चुनाव समाचारों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत और हार के अंतहीन विश्लेषण और अन्य विषयों के बीच छिपे हुए हिंसक हमलों पर लेख देखे हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मेरे सोशल मीडिया फीड में भी इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन इतना नहीं कि वे याद रह जाएं। पुस्तक के विवरण में इसके कारणों का उल्लेख किया गया है। पहला, मुख्य भूमि भारत में इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार का पूर्ण त्याग। मुझे पहली बार CSSS के बारे में कुछ साल पहले पता चला जब मैंने उनके द्वारा आयोजित नागरिक न्यायाधिकरण पर उनकी रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग का काम संभाला। न्यायाधिकरण का आयोजन दक्षिण एशिया फोरम ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑनर्ड बिलीफ CEFORB भारत के साथ मिलकर किया गया था ताकि 2019 और 2022 के बीच हुए धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई की जा सके। न्यायाधिकरण ने जितने सांप्रदायिक हिंसा के मामले सुने थे वे चौंकाने वाले थे, लेकिन घटनाओं के बारे में मेरी अज्ञानता उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। मैंने खुद को अच्छी तरह से सूचित माना था, तो इस अज्ञानता की जड़ कहाँ छिपी थी? क्या ऐसा इसलिए था कि ये घटनाएं इतने दूर दराज के शहरों में हुई कि मेरे स्कूल के राजनीतिक मानचित्र पर वे बमुश्किल एक धब्बे के रूप में दर्ज होंगी? या 1.5 बिलियन के आंकड़े की ओर बढ़ रहे देश में प्रभावित नागरिकों की संख्या बहुत कम थी? या ऐसा इसलिए था क्योंकि दैनिक समाचार पत्र के मेरे त्वरित सुबह के स्वीप के दौरान शीर्षक सामने नहीं आया था? रिपोर्ट एक रहस्योद्घाटन थी। मणिपुर हिंसा पर CSSS की तथ्य खोजी रिपोर्ट भी ऐसी ही होने का वादा करती है। वह गंदा पदार्थ क्या है? एलन सीली ने अपने उपन्यास ट्रॉटरनामा में पूछा है, इस गंदे पदार्थ को क्या कहते हैं? गंदे पदार्थ को इतिहास कहते हैं। मणिपुर की वर्तमान स्थिति को समझने का कोई भी प्रयास राज्य के अतीत में कुछ बदलाव किए बिना अधूरा रहेगा। रिपोर्ट क्षेत्र के संक्षिप्त इतिहास से शुरू होती है और वर्तमान स्थिति में 2 विवादित पक्षों, घाटी के मैतेई और पहाड़ियों के कुकी की संभावित उत्पत्ति का पता लगाती है। फिर यह ब्रिटिश काल और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में कुकी द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह बाद में प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि मूल और संबद्धता के दावे और प्रतिदावे संघर्ष के मूल कारणों में से हैं। 1949 तक इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न स्वदेशी समूह और अन्य लोग शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। मैतेई घाटी में रहते थे और कुकी पहाड़ियों में रहते थे। उन्होंने दूसरों की जीवन शैली और रीति रिवाजों को बाधित के बिना अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली और रीति रिवाजों का पालन किया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो मणिपुर को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया, जिसके प्रमुख राजा थे और इसका संविधान भी भारत ने ही संभाला। भारत ने इसके विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को संभाला, लेकिन 1949 में राजा ने आरोहण पत्र पर हस्ताक्षर किए और मणिपुर का भारत में विलय हो गया। ये मणिपुर के लोगों को पसंद नहीं आया और अलगाववादी आंदोलन उभरे। नागाओं की स्वायत्तता की मांग मणिपुर में भी फैल गई, जहां मैतेई और कुकी के बाद वे इस क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े समुदाय हैं। अशांति शांत होने से इनकार करते हुए भारत सरकार ने 1958 में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम ने उन स्थितियों में चरम उपायों के उपयोग की अनुमति दी जो जरूरी नहीं कि उनकी गारंटी हो। अगले कुछ दशकों में मामले और भी जटिल हो गए। विभिन्न समूह उभरे जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग एजेंडा और मांगों की सूची थी। AFSPA ने सेना को क्षेत्र में व्याप्त हिंसा और भय को दबाने के लिए खुद को स्वतंत्र रूप से लागू करने की अनुमति दी। इस मनमानी के साथ अनेक परेशानियां भी आईं। इतिहास का पाठ रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीत को देखे बिना वर्तमान परिदृश्य को स्पष्टता से देखना असंभव है। मुश्किल बच्चा कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से कॉफी पर मिला, जबकि उसके 7 और 12 साल के बच्चे बगल के प्लेजोन में मौज मस्ती कर रहे थे। उसका बड़ा बच्चा उसे परेशान कर रहा था, कभी कभार गुस्सा करने या काम न करने से परे परेशानी। चीजें बढ़ने लगी थी और जोड़े की शादी को प्रभावित करने लगी थी। स्कूल ने व्यवहार संबंधी विकारों के लिए परामर्श और परीक्षण का सुझाव दिया। जब तक यह प्रक्रिया चलती है, तब तक बच्चे को शिक्षकों, रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा मुश्किल बच्चों के सामान्य समूह में रखा जाता है। इस बीच किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा बच्चा अपनी जगह और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि उसे ऐसे कारणों से उकसाया और उकसाया जा रहा है जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा है। उसकी समस्या विशिष्ट है, लेकिन मुश्किल के सामान्य लेबल का मतलब है कि कोई भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या करना है। मणिपुर मुझे उस बच्चे की याद दिलाता है, राज्य दशकों से देश के भीतर अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई झड़पें और संघर्ष हुए हैं, लेकिन माता पिता और अच्छे इरादों वाले माता पिता समस्या की जड़ तक पहुंचने और उसका इलाज करने की कोशिश करने के बजाय यह राजनीतिक गिद्धों का शिकार बन गया। चाहे विभिन्न गुटों को खुश करना हो या उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना हो, सत्ता में आने वाली सरकारों ने अपने हितों को सबसे आगे रखा और मणिपुर की जरूरतों को नजरअंदाज किया। 2017 से विभाजनकारी रणनीति सबसे आगे रही है। दोनों समुदायों की असुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की कहानियां गढ़ी गई हैं। एक कहानी का समर्थन दूसरे समूह के अधिकारों के खिलाफ जाता है और इस तरह डर और असुरक्षा पैदा होती है। रिपोर्ट में उन घटनाओं का वर्णन किया गया है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पहले से सह अस्तित्व वाले मीतेई और कुकी के बीच समीकरण को और बिगाड़ दिया है। मणिपुर के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र सरकार से मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करे। तब यह तनाव चरम पर पहुंच गया। कुकी लोगों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे पहले से ही लाभ प्राप्त मैतेई लोगों को और अधिक लाभ मिलेगा और वे कुकी लोगों के अधिकारों का हनन कर सकेंगे। उच्च न्यायालय के इस आदेश का विरोध करने के लिए मणिपुर के अखिल आदिवासी छात्र संघ ATSM ने 3 मई को सुबह 10 बजे चूड़ा चांदपुर में एक रैली का आयोजन किया। रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का दावा है कि मैतेई लोगों ने 2 मई को रैली पर हमला करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। अधिकांश विस्फोटों की तरह कोई नहीं जानता कि किसने पहली गाली दी या पहला पत्थर फेंका, लेकिन रैली हिंसक हो गई। इसके बाद उंगली उठाने और भी हिंसक हरकतें हुई, लक्षित हिंसक हरकतें। विशिष्ट इलाकों में विशेष समुदायों के सदस्यों पर हमला किया गया, घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें जला दिया गया। चर्च, मस्जिद और मंदिर अपवित्र किए गए। हत्याएं, बलात्कार, क्रूरता। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 15 महीनों में 220 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कई जगहों पर शरणार्थी शिविर बनाए गए हैं। राज्य के भीतर चेक पॉइंट के साथ अनौपचारिक पहरेदार सीमाएं बनाई गई हैं, ताकि नीतई घाटी और कुकी पहाड़ियों की भूमि का सीमांकन किया जा सके। इन सीमाओं पर उतनी ही सख्ती से पहरा है जितना कि दो युद्धरत देशों के बीच होता है। पार करने के लिए CSSS टीम को गहन पूछताछ और तलाशी से गुजरना पड़ा। कुकी और नीतई, जो उन्हें पार करने की कोशिश करते पाए गए, उनकी हत्या कर दी गई। भारत का संविधान अपने नागरिकों को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी देता है, लेकिन वर्तमान में मणिपुर में कुकी को निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए मिजोरम के आइजोल तक 8 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है। सीमा उनके और घाटी में हवाई अड्डे के बीच एक अटूट खाई की तरह खड़ी है, जो 1 घंटे की दूरी पर है। मणिपुर हिंसा भारत में सबसे अभूतपूर्व संघर्षों में से एक है और इसने राज्य को युद्ध जैसी स्थिति में डाल दिया है। फिर भी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया गया है, केवल कुकी को लक्षित करने और मैतेई को शांत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इससे मैतेई द्वारा प्रचारित कथानक को और बढ़ावा मिलता है और कुकी के बीच भय बढ़ता है। इस प्रकार बर्तन शांत होने से इनकार करता है और उबलने का डर बहुत वास्तविक है। इस क्षेत्र में शांति की बहाली राज्य के हाथ में है। एक राजनीतिक समाधान ही तबाह मणिपुर और उसके घायल लोगों का इलाज शुरू करने का एकमात्र साधन है, लेकिन उदासीनता से कोई उपचार नहीं निकल सकता। और यह पाठक केवल यह आशा कर सकता है कि CSSS की रिपोर्ट मणिपुर में शांति लाने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त शोर मचाएगी। बहुत आशावादी शायद, लेकिन इसने इस पाठक को भूगोल की परीक्षा में अतिरिक्त अंक के प्रोत्साहन के बिना भारतीय मानचित्र पर इसके स्थान को याद करने के लिए प्रेरित किया। तो आखिरकार आशा तो हो सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद।